शुरू करना। ठीक है। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس والے درس میں ہم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہشتی زیور سے کتاب السلوک والاحسان پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو اس کا سب ٹائٹل یا عنوان ہے وہ ہے اخلاق خمیدہ اور ان کے حصول کے طریقے. تو یہ سب تو ہم پڑھ چکے ہیں، بس ایک آخری پیراگراف رہ گیا تھا، کلاس ہی نہیں ہو سکی تھی. اس سے پچھلے ہفتے جو ہے وہ ہم یہ بات پڑھ رہے تھے کہ حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ ہم نے ہمیں انسانوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، تو اس میں پھر انسانوں کی تین قسمیں بتائی تھیں. ٹھیک ہے، ایک قسم کے وہ لوگ تھے کہ جو کہ جن کے ساتھ دوستی اور رشتہ داری کا تعلق ہوتا ہے، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ تھے کہ جن کے ساتھ صرف جان پہچان کا تعلق ہوتا ہے. ٹھیک، یعنی دوستی اور رشتہ داری کا تعلق یہ بہت ہی مضبوط تعلق ہوتے ہیں. رشتہ داری کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، بایولوجیکل ریلیشن شپس بھی ان کو کہتے ہیں. دوستی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ قلبی تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی قلبی محبت جس کے اندر انوالو ہوتی ہے اس کو دوستی کا تعلق کہتے ہیں. تو یہ بہت ہی اہم تعلق ہوتے ہیں، بہت ہی مضبوط تعلق ہوتے ہیں. دوسرے وہ انسان ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ صرف جان پہچان کا تعلق ہوتا ہے، یعنی ہم ان کے حالات کو کچھ جانتے ہیں، ان کے گھر بار کے معاملات کو کچھ جانتے ہیں، ان کے طور طریقوں کو کچھ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کے ساتھ دوستی نہیں ہے، قلبی تعلق نہیں ہے، ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، لیکن جان پہچان ہے. جیسا کہ پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ اکثر ایسا معاملہ ہوتا ہے، ساتھ کام کاج کر کام کرنے والوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، اور دور کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں جو کہ یعنی امیڈیٹ فیملی کے اندر نہیں آتے ہیں، بہت دور کی فیملی میں آتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے. پھر تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ جان پہچان بھی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کا یا تو ونس ان اوائل کبھی کوئی ونس ان اوائل بھی نہیں، بلکہ ان کے ساتھ بس کبھی آپ کا چلتے پھرتے جو ہے نا وہ واسطہ پڑ گیا، بس اسٹیشن کے اوپر واسطہ پڑ گیا، ٹرین اسٹیشن کے اوپر، ایئرپورٹ کے اوپر. ٹھیک ہے، یا یہ کہ آج کل کے دور کے اندر خصوصاً جو میڈیا کے اوپر لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس قسم کا بھی میڈیا ہو، اور سوشل میڈیا بھی اس کے اندر انوالو ہے، اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے. ٹھیک ہے، لوگ پتہ نہیں کیوں سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا سم تھنگ کوئی نا بالکل کوئی الگ چیز ہے، وہ ٹرسٹیبل ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں کو آپ زیادہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور بالکل بہت بڑا یہ دھوکہ ہے. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا بالکل بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو صحیح معنوں میں جان سکیں. ٹھیک ہے، تو میڈیا کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان سے ہماری جان پہچان بھی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بس جیسا اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں میڈیا کے اوپر آ کر کے، ہم ویسے ہی ان کو جانتے ہیں، اس سے زیادہ ہم ان کے بارے میں نہیں جان سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ تیسری کیٹیگری حضرت نے بیان فرمائی تھی. ٹھیک ہے، تو جان پہچان والوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم بات پڑھ رہے تھے. بالکل آخری ٹاپک جو اس عنوان کے اندر ہے وہ تھا کہ جن سے صرف جان پہچان ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، यानी दोस्ती का ताल्लुक नहीं है, और जो है ना इनके साथ रिश्तेदारी का ताल्लुक नहीं है, और इनके साथ वो भी मामला नहीं है कि जान पहचान भी ना हो, ठीक है। तो ये गोया के दरमियान दरमियान के लोग हैं, ना इनके साथ दोस्ती और रिश्तेदारी है, ना इनके साथ जो है ना वो ये मामला है कि बिल्कुल ही जान पहचान भी नहीं। तो ये वो लोग हैं जिनके साथ जान पहचान होती है इंसान की, ठीक है, वंस इन अ वाइल आप उनके साथ मुलाकात वगैरह कर लेते हैं, तो ये दरमियानी दर्जे के लोग हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जो है ना फरमाते हैं कि बड़ी एहतियात दरकार है, ठीक है, क्योंकि ये दोस्त भी नहीं है कि जो कि पहले हम बता चुके हैं कि भाई दोस्ती करने से पहले इन इन चीजों को देख लो और उसके बाद दोस्ती करो, यानी जिनके अंदर अच्छी क्वालिटीज मौजूद हो, जिनके अंदर शराइत मौजूद हो दोस्ती की, तो उनके साथ दोस्ती करो। तो भाई जब आपने शराइत देख करके किसी के साथ दोस्ती कर ली है तो अब तो वो आपके फायदे का ही होगा ना, ठीक है। ये और बात है कि आपने शराइत देखे बगैर ही दोस्ती कर ली, एक दो चार शराइत को छोड़ करके बाकी शराइत देखी और ऐसी दोस्ती कर ली, तो फिर तो वो आपके लिए फायदा मंद नहीं होगा, फिर तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन हम ये गुमान कर रहे हैं कि आपने हमारी बात मान ली और शराइत देख करके किसी के साथ दोस्ती कर ली, तो फिर वो तो आपके लिए फायदा मंद होगा। तो ये जो जान पहचान वाले होते हैं, ये क्योंकि दोस्त नहीं होते, इस वजह से आपको फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो फिर फरमाते हैं कि अगर फायदे में नहीं है तो बुराई में भी नहीं है, और जिनसे ना दोस्त सॉरी जिनसे दोस्ती है तो वो तो फायदे में ही है, अगर फायदे में चलो नहीं भी बहुत फायदा पहुंचा रहे तो कम से कम बुराई भी नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि वो आपके साथ कल्बी ताल्लुक रखने वाले लोग हैं तो वो बुराई भी नहीं पहुंचाएंगे आपको। और जिनसे ना दोस्ती है और ना वो बिल्कुल ना वाकिफ लोग हैं, ठीक है, यानी दरमियान के दर्जे के लोग हैं, तो ज्यादा तकलीफ ऐसे ही लोगों से पहुंचती है कि जुबान से तो दोस्ती और खैरख्वाही का दम भरते हैं और पसे पर्दा जड़ें खोदते और हसद करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने ना बड़ी सलाहियत दी होती है, ठीक है, यानी बड़ी उनको उनके पास इंटेलिजेंस होती है, बड़ा उनका आईक्यू जो है ना वो बहुत बुलंद होता है, बहुत जबरदस्त आईक्यू होता है उनका, तो उनको जो है ना वो सामने सामने जो है ना बड़ा खैरख्वाह बनने की तरकीब आती है, ठीक है ना, बड़ा उनको आता है कैसे जो है वो झुक झुक के मिलते हैं, कैसे जो है वो जी हुजूरी करते हैं, कैसे जो है ना वो जी जी हम तो आप ही के हैं और हम आपके कितने खैरख्वाह हैं और हम आपके कितने दोस्त हैं, ठीक है ना। ये हर बंदा ये काम नहीं कर सकता, हर बंदा ये काम नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, और अनफॉर्चुनेटली कभी जो है वो मुआशरे में इन लोगों की तादाद ज्यादा भी होती है, तो कुछ से मुराद जो है जरूरी नहीं है कि ये हमेशा माइनॉरिटी होती है, बल्कि कभी ये मेजोरिटी भी हो सकती है किसी खास मुआशरे के अंदर। तो इन लोगों को बड़ा हुनर आता है, ठीक है, सामने सामने अच्छा बनने का हुनर, लेकिन असल में वो आपके साथ खैरख्वाह नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे लोगों से जो है ना फिर बड़ी तकलीफ पहुंचती है, ये जुबान से तो दोस्ती और खैरख्वाही का दम भरते हैं और पसे पर्दा जड़ें खोदते और हसद करते हैं, हर वक्त ऐब ढूंढा करते हैं और बदनाम करने की फिक्र में रहते हैं, इसलिए जहां तक हो सके किसी से ख्वाह मख्वाह जान पहचान पैदा मत करो, ठीक है। यानी ये जो जान पहचान वाले वाली एक लत लगी हुई होती है, ठीक है, और खास तौर पे जैसे पहले भी बताया है कि स्कूलों वगैरह के अंदर जो है ना ये बाकायदा बहुत ही अच्छी सिफत बना करके पेश किया जाता है कि देखो उसकी कितनी ज्यादा जान पहचान है, ये कितने सारे लोगों को जानता है या जानती है, और जो कम लोगों को जानता है, जिसकी ज्यादा जान पहचान नहीं होती है, उसको ताने दिए जाते हैं, उसको ताने दिए जाते हैं, बुरा भला कहा जाता है, हत्ता के अपने वालदैन तक ताने देते हैं, ये देखो फलाना जो लड़का है या फलानी जो लड़की है उसके तो इतना बड़ा सर्कल है, उसका तो बड़ा इतना सर्कल है, और तुम्हारे तो कोई जान पहचान नहीं है, तुम तो अजीब मुंह चोर किस्म की चीज हो, अजीब अजीब वर्ड्स जो है ना वो कॉइन किए हुए हैं, ईजाद किए हुए हैं, मुंह चोर और इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है, और भी वर्ड उसी ध्यान में नहीं आ रहे, लेकिन उसका मतलब यही कि है नहीं, ठीक है। तो इस किस्म के जो है वो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं ताना देने के लिए, लोगों को ज्यादा जान पहचान बनाने की कोशिश करी जा रही होती है। फैमिली में भी ऐसे लोग होते हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाए, यही तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने बता रहे हैं भाई, ठीक है, तो गौर से सुना करें क्लास के अंदर। तो फरमा रहे हैं कि हर वक्त ऐब ढूंढा करते हैं और बंदा, तो खामखा जो है ना वो जान पहचान पैदा मत करो, यानी ऐसे लोगों से आपके सवाल के जवाब जो है ना वो ये है कि ऐसे लोगों से जो है ना वो यानी इंटरेक्शन मत किया करें, ठीक ऐसे लोगों से जो है ना, वो जान पहचान पैदा वैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी दुनिया को देखकर हिर्स मत करो। एग्जैक्टली जो आपका सवाल है उसका जवाब यहीं पे लिखा हुआ है कि उनकी दुनिया को देख करके हिर्स मत करो। ठीक है ना, कि उनके पास इतनी अच्छी गाड़ी है, उनके पास इतना अच्छा घर है, उनके इतने अच्छे कपड़े हैं, हत्ता के औरतों के साथ एक बहुत बड़ी मुसीबत ये भी पड़ जाती है कि वो ना अपने शौहर को फिर उनके शौहरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, कि उनके पास तो इतना अच्छा शौहर है, ठीक है, इतना अच्छा शौहर है, मेरा तो शौहर अच्छा नहीं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है जिसकी वजह से एक शादीशुदा औरत की जिंदगी जो है ना वो बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो उनको देख करके जो है ना वो हिर्स मत करो और उनकी खातिर अपना दीन बर्बाद मत करो। अगर कोई तुमसे दुश्मनी भी करे तो तुम उससे दुश्मनी मत करो, उसकी तरफ से फिर तुम्हारे साथ और ज्यादा बुराई होगी जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ठीक है, यानी वो तुम्हारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं ना, तो तुम उसके साथ फिर जो है ना दुश्मनी में, यानी टिट फॉर टैट कहते हैं ना, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करना, जैसा करोगे वैसा हम भी तुम्हारे साथ करेंगे, तो इस तरीके से ना एक झगड़ा लड़ाई शुरू मत करो। ठीक है, क्योंकि इससे जो है ना वो बुराई और ज्यादा होगी जिसको तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे और इसी धंधे में लग जाओगे जिससे दीन और दुनिया का नुकसान होगा। इस वास्ते दरगुजर ही बेहतर है। ठीक है, तो जब कोई ऐसे जान पहचान वाले लोगों के अंदर जो है ना वो फसाद के ऊपर उतर आए, तो उस वक्त जो है ना फिर उसको अवॉइड करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, उसको उसके साथ इंगेज नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जब इंगेज हो गए तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह यही फरमा रहे हैं ना कि ये फसाद बढ़ेगा। और फसाद का मामला ये है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुरान मजीद में, वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, कि अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं करते। ठीक है, तो अल्लाह की नाराजगी से बचने की खातिर फसाद को अवॉइड करना, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारे साथ। ठीक है, वो क्या है कि अच्छा, इन्होंने जो है ना ये जो लिखा है ना, करीबी रिश्तेदार हों अगर तो उनको अवॉइड ना किया जा सके, उनको अवॉइड ना किया जा सके ना, तो उसके लिए फिर आपको जा करके थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ेगी कि पीछे की रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी जिसके अंदर करीबी रिश्तेदार के बारे में हमने बड़ी तफसील के साथ बात करी थी हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत को पढ़ पढ़ करके। ठीक है, तो अब बार बार जो है वो पीछे की चीज को रिपोर्ट करना, तो वो अब करीबी रिश्ता, अभी हम करीबी रिश्तेदार की तो बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, करीबी रिश्तेदार की बात पहले कर चुके हैं, तो उसको जब सुनेंगे ना तो इंशाल्लाह फिर बात समझ में आ जाएगी। या फिर ये कि अपने नोट्स को देखें, यकीनन आपने नोट्स तो बनाए होंगे पिछली क्लासेस के अंदर, तो नोट्स को देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमने ये वाली बात करी थी। ठीक है, तो ये जो फसाद का मसला है ना, ठीक है, तो फसाद को अवॉइड करना। ठीक है, इसके अंदर जो है ना ये एक बहुत बड़ा हमारे साथ मसला है कि हम किस नीयत से फसाद को अवॉइड कर रहे हैं, हम किस नीयत से फसाद को अवॉइड कर रहे हैं। यूजुअली हम लोग जो फसाद को अवॉइड करते हैं ना, कि जब कोई शख्स जो है वो गुंडागर्दी पर उतर आता है, कोई शख्स हमारे खानदान में से या हमारे जान पहचान वालों में से बहुत ही बदमाशी के ऊपर उतर आता है, तो हम उसको किस वजह से अवॉइड करते हैं, हम उसके साथ क्यों नहीं एंगेज होते, क्योंकि अगर हम एंगेज होंगे तो वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, वो हमें नुकसान पहुंचाएगा, वो हमें मारेगा, वो हमें किसी तरीके से जो है वो यानी मसला हमारे साथ खराब करेगा। ठीक है, तो इस नियत से चूंकि हम उसको अवॉइड करते हैं ना, तो इसके बाद फिर ये होता है कि वो नुकसान हमें फिर भी पहुंचा रहा होता है और मसला जो है ना वो ज्यादा खराब हो जाता है, मसला ज्यादा खराब हो जाता है। ठीक है, तो अब ये हमारा तजुर्बा हो गया कि हमने किसी को जो है ना वो उससे बचने के लिए अवॉइड करने की कोशिश करी और मसला जो है ना वो फिर भी ठीक नहीं हुआ, मसला जो है वो खराब हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है, हमने किस नीयत से अवॉइड किया कि वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है ना भाई, ठीक है, ये एक बुरी नीयत नहीं है, ये बुरी नीयत नहीं है, अच्छी नीयत है कि अपने आप को जो है वो नुकसान से बचाने के लिए किसी को अवॉइड करना। ठीक, आपने भाई इस नीयत से किसी को अवॉइड किया, आप जो है वो उसकी शर से जो है वो कुछ दिन के लिए बच गई, लेकिन इवेंचुअली उसका शर जो है ना वो आप तक पहुंच ही गया, आपको उसने घसीट ही लिया मसले के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद होता ये है, ठीक है, होता क्या है, मैं आपको असल में जो बताना चाह रहा हूँ ना वो कुछ और चीज बताना चाह रहा हूँ। वो क्या कि होता ये है कि किसी और शख्स के साथ जो है ना वो ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है कि कोई शख्स जो है ना वो उसको नुकसान पहुंचाने के दरपे हो गया है, गुंडागर्दी के दरपे हो गया है, ठीक है ना। अब वो शख्स जो है ना उसका था किसी शेख के साथ इस्लाही ताल्लुक, ठीक है ना, किसका ताल्लुक, जो गुंडागर्दी उतर आया वो नहीं, बल्कि जिस शख्स के खिलाफ कोई गुंडागर्दी पे उतर आया है वो शख्स जो है ना किसी शेख के साथ इस्लाही ताल्लुक में था, ठीक है। तो अब उस शख्स ने जो है ना वो अपने शेख से पूछा कि हजरत मुझे क्या करना चाहिए इस मामले में, फलाना शख्स जो है ना वो तो गुंडागर्दी पे उतर आया है, वो तो नुकसान पहुंचाने के ऊपर उतर आया है, तो आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो अब शेख ने जो है ना वो इसको नसीहत करी कि तुम उसके साथ इंगेज मत, ठीक है, तुम उसके साथ इंगेज मत हो, तुम जो है ना अपने मामले को अल्लाह के हवाले, तुम अपने मामले को अल्लाह के हवाले करो, ठीक है, क्योंकि जायज असबाब तुमने इख्तियार कर लिए, वो जो है वो मसले हल नहीं हुए उससे, तो जब जायज असबाब खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद एक ईमान वाला जो है वो नाजायज असबाब इख्तियार करना शुरू नहीं करता, ईमान वाला नाजायज असबाब इख्तियार करना शुरू नहीं करता, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देना ये नाजायज असबाब कहलाते हैं, ये नहीं करता, बल्कि ईमान वाला जो है ना वो अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। तो तुम भी अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दो, ठीक है। अब जब इनका ये मामला जो है ना कि भाई इनको नुकसान का अंदेशा था, इन्होंने जो है वो शेख से मशवरा किया, शेख ने इनको मशवरा दिया कि अल्लाह के हवाले करो मामले को। अब जब ये सिचुएशन उनको पता लगती है, उनको जिनका जिक्र पहले किया था, ठीक है, कि जिन्होंने नुकसान से बचने की खातिर जो है वो किसी के किसी 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 को छोड़ दिया था, ठीक है ना, किसी गुंडागर्द किसी बदमाश से इंगेज ना होने का फैसला किया था नुकसान से बचने की खातिर, ठीक है ना, लेकिन उनको बाद में नुकसान हो ही गया, उनको बाद में नुकसान हो ही गया, ठीक है ना। तो जब उन्होंने ये बात सुनी ना तो वो क्या करते हैं, वो फिर इस शख्स को जिसने अपने शेख से मशवरा किया और शेख ने अल्लाह की खातिर मसले को अल्लाह के हवाले करने का मशवरा दिया, अब ये जो है ना उसको ये कहते हैं रहने दो भाई, रहने दो इन बातों को, हमने भी ऐसे किया था तो हमें तो नुकसान हो गया, हमने भी ऐसे किया था हमें तो नुकसान हो गया, तो शेख साहब की बातों को रहने दो और तुम जो है ना वो छोड़ना मत, तुम मत छोड़ना बल्कि तुम लगे रहो इस मसले के अंदर, ठीक है ना, तुम जो है ना वो तुम भी यानी स्टैंड लो और तुम भी जो है ना वो डट जाओ और तुम भी ईंट का जवाब पत्थर से दो, देखो हमने जो है ना वो नहीं दिया था तो हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये जो कर रहे हैं ये गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, इसलिए कि इन्होंने जो ये काम किया था ना वो अल्लाह की नाराजगी से बचने की नीयत से नहीं किया था, इन्होंने अल्लाह के इस हुक्म पे अमल की नीयत से नहीं किया था कि अल्लाह ला युहिब्बुल फसाद, इस वजह से उन्होंने फसाद को अवॉइड नहीं किया था, उन्होंने फसाद को इसलिए अवॉइड किया था क्योंकि उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से दे सके, तो इस वजह से उन्होंने अवॉइड कर लिया था। अगर उनके पास पत्थर होता, यानी उनके पास भी कुछ ना कुछ ताकत होती, उनके पास भी जो है ना वो सोर्सेज होते, उनके पास भी जो है वो बदमाशी के कोई जराए होते, तो हरगिज वो जो है वो अवॉइड ना करते, बल्कि वो भी जो है वो दो हाथ आगे बढ़ करके जो है वो उस बंदे को जवाब देते, ठीक है, चाहे वो बेशक नाजायज तरीका होता लेकिन कोई बात नहीं, वो नाजायज तरीके से भी उसको जवाब दे, ठीक है ना भाई। उन्होंने तो इस नीयत से जो है वो मामले को छोड़ा था,
अल्लाह की रजा की नियत से तो मामले को नहीं छोड़ा था ना, अल्लाह के हवाले तो नहीं किया था ना अपने मामले को। ये दूसरा शख्स जो है, जो कि अपने शेख के मशवरे के साथ अल्लाह के हवाले कर रहा है मामले को, भाई इसमें और पहले वाले शख्स में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों के दरमियान, ठीक है ना। इस फर्क को हम लोग नहीं समझते क्यों, इसलिए कि हमारा जो ईमान का मामला है ना, ये बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। हमें बेसिक नॉलेज ही नहीं है ईमान के बारे में, दीन के बारे में, बेसिक हमारी समझ ही बिगड़ी हुई है, शैतान ने बिगाड़ दी है और इंसानों ने बिगाड़ दी हमारी हमारी ये समझ, ठीक है। तो हम जो है ना, फिर वो उल्टी सीधी आगे से दलीलें देते हैं, उल्टी सीधी जो है वो बातें करते हैं, और दोनों मामला को एक जैसे लेवल के ऊपर लेकर के आते हैं, हालांकि जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों के अंदर, ठीक है। ईमान वाले को तो अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की रजा सबसे ज्यादा अजीज होती है, वो इसके लिए अपने काम करता है, किसी के साथ एंगेज होता है तो अल्लाह की खातिर एंगेज होता है, किसी के साथ डिसएंगेज होता है तो अल्लाह की वजह से डिसएंगेज होता है, और उसको अपना नफा और नुकसान जो है वो आखिरत में नजर आ रहा होता है। अपना नफा नुकसान कहाँ नजर आ रहा होता है? आखिरत में, कि आखिरत में मुझे इसका नफा मिलेगा, और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो आखिरत में मेरा नुकसान होगा। दुनिया के अंदर मुझे नफा मिले या ना मिले उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में मुझे अगर कोई नुकसान भी मिल जाए उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये तो बुनियाद है ईमान वाले की, ये तो बुनियाद है ईमान वाले की, ये सोच। हमने किस चीज को बुनियाद बनाया हुआ है बताए ना जरा, हमारे ईमान, हमारे दीन की बुनियाद किस चीज पर है? जबकि ईमान वाले की दीन की बुनियाद तो इस सोच के ऊपर थी जो कि अभी बात हो चुकी, लेकिन हमारे दीन की बुनियाद किस चीज के ऊपर है? जरा सा जल्दी से बता रहे तो फिर आगे आगे चढ़े। हमारे दीन की बुनियाद किस बात के ऊपर है? किस चीज के ऊपर हमारे दीन की बुनियाद? जी जल्दी से बताएं, पता तो है आप लोगों को, कुछ तो है जिनको पता है कम से कम। जी किस चीज पर है दीन की बुनियाद हमारे वाले? हमारी दीन की बुनियाद दुनिया पर नहीं, इतना हमारी दीन की बुनियाद दुनिया पर है, लेकिन आपकी ये बात जो है ना वो किसी के समझ में नहीं आएगी। जरा भी वो बुनियाद बता दें जो कि जरा आसान, समझना भी आसान हो सबके लिए, ठीक है। हमारी दीन की बुनियाद किस चीज पर है भाई? आखिरत पर है, आखिरत की इस सोच के ऊपर है, इस ईमान के ऊपर है। दीन की बुनियाद तो ईमान के ऊपर होती है, और ईमान क्या चीज? आखिरत पर ईमान, अल्लाह पर ईमान, कि अल्लाह ताला जजा देता है, अल्लाह ताला सजा देता है आखिरत में, ठीक है। दुनिया में मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिली, लेकिन आखिरत में तो 100% देगा, ठीक है। तो हमारे दीन की बुनियाद जो है ना, जिसको के जिनको पता भी है ना, वो भी कतरा रही है जवाब देने से, पता नहीं किस वजह से, गिल्टी कॉन्शियंस है या क्या है या पता नहीं, किसी और काम में इस वक्त मगन है। हमारे दीन की बुनियाद जो है वो आमाल के ऊपर है, आमाल के ऊपर। सीरत क्लास नहीं ली थी किसी ने? ली तो थी आपने से बहुत सोने, सीरत क्लास भी देखा था, नाम तो देखा था कम से कम। तो सीरत क्लास के अंदर हफ्ते के दिन क्या बात समझाई थी? हमारे दीन की बुनियाद जो है ना वो आमाल के ऊपर नहीं है, हमारे दीन की बुनियाद ईमान के ऊपर है। और ईमान है क्या? वो अकायद का नाम है। ईमान है क्या? अकायद का नाम है। यानी इन अदर वर्ड्स, हमारे दीन की बुनियाद अकायद के ऊपर है। ये अकीदा है कि जजा और सजा जो है वो आखिरत के अंदर मिलेगी, और यकीनन मिलेगी, ठीक है ना। ये कोई झूठ नहीं है, ये झूठे वादे नहीं है, ये खामखा की जो है ना वो लारे लप्पे नहीं दिए हुए हमें कुरान मजीद के अंदर। हमारे कराची की सड़क की जो स्लैंग होती है ना, स्ट्रीट लैंग्वेज में कहते हैं किसी को उल्टे सीधे को, यानी वादे करके ना किसी को चुप करा देना, इसको कहते हैं लारे लप्पे देना, ठीक है। यानी यू यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट, आपने किसी को चुप कराने के लिए बस उसको हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, हाँ, इसको कहते हैं लारे लप्पे देना। तो कुरान मजीद ने हमें जो है ना वो लारे लप्पे नहीं दिए कि
मैं यामल सू अयुज्जा भी, और हम किसी के अमल को जाया नहीं करेंगे, चाहे वो मर्द है चाहे वो, इन नीला उरीदु अमला, क्या है नहीं कानुदी अमला आमिल मिनकुम मिन दकरिन व अनसा व हुवा मुमिन। जो भी ईमान वाला होगा चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, हम उसके किसी अमल को जो है वो जाया नहीं करेंगे। ये लारे लप्पे नहीं है, ये ऐसे खामखा के जो है वो खाना पूरी के अल्फाज नहीं है कुरान मजीद के अंदर, ये हकीकत है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना वो हमारे ये सब, तो हमारे दीन की बुनियाद तो इन बातों पर है ही नहीं। हमारे दीन की बुनियाद तो है अमाल करने के ऊपर, इधर से भाग दौड़ करके जो है वो नमाजें पढ़नी, उधर से भाग दौड़ करके जो है वो चक्कर काट के आ गए, राइट, उमरा करो जी उमरा करो जी उमरा करो जी, ठीक है ना, चक्कर काट काट करके आ गए वहां से, इधर से उधर पता नहीं क्या क्या करके आ गए। ये हमारे दीन की बुनियाद है, सोच वही की वही, दुनिया के अंदर घूमने वाली सोच, वही दुनिया की सोच बस, ठीक है ना। तो ऐसे दिन जो होते हैं ना वो फिर बहुत ही बुरा दिन होता है। चले, तो ये जो हजरत ने बात फरमाई, तो फिर उसके यानी ये तो कि उनकी दुनिया को देख के हजमत का अच्छा था, तुम उसी धंधे में लग जाओ, यानी तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद उसी में तुम लगे रहोगे, जिससे दीन और दुनिया का नुकसान होगा। ठीक है, तो हम भी जो है ना वो जब किसी के साथ हमें कोई दुश्मनी हो जाती है, कोई हमें जो है वो उसकी चीजें बुरी लग जाती है ना, तो अब हमारी जिंदगी का जो महवर होता है ना वो वही शख्स बन जाता है, और उसके साथ दुश्मनी को निभाना। ठीक है, अब हम शुरू में तो समझते हैं कि जी बस मैं थोड़ा सा टाइम इसको दे रही हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा मेरे जिंदगी के 24 घंटों में जो है ना बस मैं दुश्मनी निभाने के लिए 1 घंटा खर्च करती हूँ, ठीक है, बाकी काम तो मैं बड़े पॉजिटिव काम कर रही होती हूँ, ठीक है ना, बाकी जो 23 घंटे हैं उनमें तो मैं पॉजिटिव काम कर रही हूँ, तो सिर्फ 1 घंटा जो है ना वो मैंने दुश्मनी निभाने में दिया हुआ है। लेकिन दुश्मनी के जो ये काम हम कर रहे होते हैं ना, इनमें हम गुनाहों के मुर्तकिब हो रहे होते हैं, ठीक है, गुनाहों के मुर्तकिब हो रहे होते हैं, और गुनाह की नेचर ये है कि वो एक स्लिपरी स्लोप होता है। जब आप उस स्लिपरी स्लोप के ऊपर कदम रख देते हैं ना, तो अब आप फिसलते चले जाते हैं गुनाह के अंदर, अब आप गुनाह के अंदर फिसलते चले जाते हैं। तो ये जो आप 1 घंटा दुश्मनी निभा रही थी ना किसी शख्स के साथ, 1 घंटा जो है वो अपना जाया कर रही थी फकत उसको बुरा बनाने में, फकत उसको गंदा करने में, फकत उसकी गीबत करने में, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज, ये बढ़ेगा, ठीक है ना। और क्या होगा कि वो 1 घंटा फिर आपकी जिंदगी में 2 घंटा बन जाएगा, रोजाना 2 घंटा, फिर थोड़े दिन के बाद वो 2 घंटे से बढ़ता हुआ 3 घंटा बन जाएगा, 3 घंटे से बढ़ता हुआ 4 घंटा बन जाएगा, 4 से बढ़ता हुआ 5 घंटा बन जाएगा, हत्ता के आप जागते एक वक्त आएगा कि वो 24 घंटा बन जाएगा। 24 घंटा कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा कि जागते हुए आप बड़ा एक्टिवली उसकी दुश्मनी के प्लॉट बना रही थी, मंसूबे बना रही थी और अमल कर रही थी, और सोते हुए भी आप ये सोच रही होंगी, जागते हुए भी यही सोच रही होंगी, और इवन नींद में भी यही सोच रही होंगी। तो इस तरह से 24 घंटे आपके दिमाग में यही चीज पकती रहेगी पकती रहेगी पकती रहेगी, बिल आखिर वो मौका आएगा कि आप जो है ना एक साइकोपैथ डिक्लेयर हो जाएंगे। डॉक्टर हजरात जब आपको देखेंगे आपके बारे में सुनेंगे तो वो कह देंगे कि भाई ये तो जहनी मरीजा हो चुकी है, ये तो पता नहीं क्या क्या पैथोलॉजिकल वगैरह और नार्सिसिज्म और यानी एक से एक जो है वो टर्म्स हैं साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है, जिसको के साइकैट्रिस्ट जो है वो लोगों के ऊपर फिर बताते हैं, अच्छा भाई ये फलाने वाले भी बाइपोलर हो चुका है, ये एंग्जाइटी का शिकार हो चुका है, ये जो है वो पैरानोया का शिकार हो, मैं लगता है थोड़े दिनों में मुझे भी एक एजाजी डिग्री मिल जाएगी साइकैट्री की। ठीक है, इतना कुछ जो है वो आजकल सुनने को मिल रहा है इसके बारे में। तो ये तो किसी के साथ दुश्मनी निभाने वाली चीज होती है ना, ये इसके अंदर गुनाह शामिल हो जाते हैं, और गुनाह फिर इंसान को खींचते हैं अपनी तरफ, वो एक छोटे गुनाह से बड़ा गुनाह, बड़े से उससे बड़ा गुनाह, उससे बड़े से उससे बड़ा गुनाह, तो इस तरह से ना फिर उसकी पूरी की पूरी जिंदगी इसी में लग के रह जाती है। ठीक है, तो वही हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि दीन और दुनिया का नुकसान होगा, इस वास्ते दरगुजर ही बेहतर है। यानी अल्लाह के हवाले करो, अल्लाह के हवाले करो, ठीक है ना, और उन बेवकूफों की बात मत सुनो जो तुम्हें इससे डिस्करेज करते हैं, उल्टी सीधी बेवकूफी की दलीलें दे करके तुम्हें इस बात से डिस्करेज करते हो अल्लाह के हवाले करने से अपने मामले को। उन्होंने खुद तो किया नहीं अल्लाह के हवाले, राइट, तो समझते हैं उन्होंने जो काम किया ना वो अल्लाह के हवाले करना था, हालांकि वो अल्लाह के हवाले करना था ही नहीं। अब जो अल्लाह के हवाले कर रहा है ना वो उसको भी रोक रहे होते हैं, तुम मत करना ये वाला काम, ठीक है ना। बहरहाल तो ना ये ताज्जुब करो कि उसने मेरे साथ ऐसा मामला किया, मेरे हक का या मेरे एहसान का या मेरे बड़े होने का या मेरे ताल्लुक का कोई ख्याल नहीं किया। यानी ये सब ये जो फलसफियाना डायलॉग्स है ना जो कि हम टीवी ड्रामों के अंदर और सीरियल्स के अंदर सुन सुन करके ना इनको हकीकत समझना शुरू हो जाते हैं, उसने मेरे मुकाम का लिहाज नहीं किया, उसने जो है मेरे हक का मेरे एहसान का ख्याल नहीं किया, या अफसाने डाइजेस्ट पढ़ पढ़ कर दिया है ना, वो दिमाग के अंदर यही डायलॉग जो है वो हर वक्त चलते रहते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को फिर जाहिर है तो इंसान हर जगह अप्लाई करने की कोशिश शुरू कर देता है फिर उसके बाद। क्योंकि अगर इंसाफ से देखो तो तुम भी खुद सबके साथ हर वक्त एक हालत में नहीं रह सकते हो, यानी दूसरों के ही बुराई नजर आती है ना हर वक्त, जो है वो करीबी रिश्तेदारों ने ये कर दिया, करीबी रिश्तेदारों ने वो कर दिया, भाई आपके किसी करीबी रिश्तेदार नहीं है, राइट, सिर्फ दूसरे आपके करीबी रिश्तेदार हैं और वो आपको धोखा देते रहते हैं, वो आपके साथ जो है बुरा मामला करते रहते हैं। व्हाट अबाउट योर सेल्फ, आप किसी की करीबी रिश्तेदार नहीं है, अगर हैं तो आप जो है वो फरिश्ता हैं, राइट, आपने कभी किसी के साथ जो है वो इस किस्म की बात नहीं करी कि उसका कोई मकाम मर्तबा था, आपने उसके मकाम मर्तबे के मुताबिक उसको वो इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं दी जैसा कि वो डिजर्व करता था, आप जो है वो माशाल्लाह इतनी जो है वो परफेक्शन ओरिएंटेड हैं कि जिसका जितना मकाम होता था आप उसको उतना ही रिस्पेक्ट देती थी, उससे बिल्कुल भी कमी बेशी नहीं करती थी, अपने बारे में इतना खुशफहमी, अपने बारे में इतना ज्यादा जो है ना वो उजब तकब्बुर और खुद पसंदी, ठीक है ना, मैंने तो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया, हाँ दूसरे मेरे साथ हर वक्त करते रहते हैं, ठीक है ना। तो दूसरों को डील करना सीखने से पहले जो है ना वो अपने आप को डील करना सीखना चाहिए, ठीक है, कि मैं क्या कर रही हूं। जो अपने आप को डील करना नहीं सीखते ना कि मैं किसके साथ क्या करती हूँ, मैं कितनी इम्परफेक्ट हूँ, मैं कितना जो है ना वो गलतियों के अंदर मुब्तला हूँ, वो शख्स दूसरों को डील करना नहीं सीख सकता। ये भी एक उसूल की बात याद रखें, जिसको दीद कसूर हासिल नहीं है ना अपने कसूरों की दीद, वो दूसरों को सही तरीके से हैंडल करना सीख ही नहीं सकता। हमारी मुसीबत ये है कि हम शुरू कहाँ से करते हैं दूसरों को हैंडल करने से, हालांकि अपना हमारा अपना आप जो होता है ना वो सबसे ज्यादा सड़ा हुआ होता है, सबसे ज्यादा बुरा होता है हमारा अपना आप, लेकिन अपना आप हमें बिल्कुल भी बुरा नजर नहीं आ रहा होता। तो थानवी रहमतुल्लाह तो फिर रूहानी मुआलिज है ना, तो फरमाते हैं कि तुम भी तो हर वक्त एक हालत पर नहीं रह सकते हो, सामने और बर्ताव होता है, ऊपर से कुछ और बर्ताव होता है, तुम्हारा भी तो यही हाल है, फिर जिस मुसीबत में खुद मुब्तला हो दूसरों पर क्यों ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं, ठीक है ना। तो किसी से उम्मीदें वाबस्ता मत करो। खुलासा ये कि किसी से किसी तरह की कोई तवक्को मत रखो, ना तो किसी किस्म का फायदा पहुंचने की, ना किसी की नजर में इज्जत बढ़ने की, और ना किसी के दिल में मोहब्बत पैदा होने की, ठीक है, कि कोई तुम्हारी इज्जत करे ये तवक्को लोगों से मत रखो, कोई तुमसे मोहब्बत करे इसकी भी तवक्को मत रखो। इसी वजह से जिनको हकीकत समझ में आ जाती है ना, सच्चाई समझ में आ जाती है, दुनिया की हकीकत, मखलूक की हकीकत, जब कोई उनको इज्जत देता है ना तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जब कोई उनको उनसे मोहब्बत करता है या मोहब्बत का इजहार करता है वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अपनी हकीकत और दुनिया की हकीकत समझ में आ गई होती है कि उनकी इतनी हैसियत नहीं कि अल्लाह का कोई बंदा या कोई बंदी उनको इज्जत दे, ठीक है, जिसको दीदे कसूर नसीब हो जाता है
अपना कसूर, जिसको अपनी जो है ना वो हकीकत समझ में आ जाती है कि मैं तो किसी काबिल नहीं हूं कि कोई अल्लाह का बंदा मुझे इज्जत दे, तो हर इज्जत के बर्ताव के बदले में वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह मैं तो इस काबिल ना था। हत्ता के दूसरे लोग तो क्या, उनकी अपनी औलाद जब इनके साथ इज्जत का मामला करती है ना, उस वक्त भी वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। उनकी अपनी बीवी या उनका अपना शौहर जब उनके साथ मोहब्बत का मामला कर रहा होता है ना, वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह मैं तो इस काबिल ना था कि कोई आपका बंदा, ये बीवी क्या है, ये तुम्हारी बंदी है, ये शौहर क्या है, ये तुम्हारा बंदा है, ये औलाद क्या है, ये तुम्हारी मखलूक है, ये तुम्हारा बंदा बंदी है, तुम्हारी औलाद नहीं, ये तुम्हारा बंदा नहीं है, तुम्हारा बेटा तुम्हारा बंदा नहीं है, तुम्हारी बेटी तुम्हारी बंदी नहीं है, ये अल्लाह ही की बंदी है, अल्लाह ही का बंदा है। अगर वो तुम्हारी इज्जत कर रहा है ना, तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। ठीक है, एक एक पॉइंट के ऊपर कि बेटे ने एक बात मान ली, आपने बेटे को कुछ करने के लिए कहा, उसने बात मान ली, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तेरा ये बंदा जो है ना ये मेरी बात मान रहा है, हालांकि मैं तो इस काबिल ना था कि मेरी बात मानी जाती। कभी सोचा है इस तरीके से? तो जो वाकई अच्छे लोग होते हैं ना, वो तो सिर्फ इसी तरह से सोचते हैं, वो सिर्फ इसी तरह से सोचते हैं, वो दूसरी तरह से नहीं सोचते कि कभी ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई अल्लाह की अल्लाह का शुक्र अदा करें, और कभी कह रहे हैं कि नहीं आई डिजर्व दिस, मेरा तो हक बनता था कि मेरा बेटा मेरी बात माने, मेरा तो हक बनता था कि मेरी बेटी मेरी बात माने, मेरा तो हक बनता था कि मेरा शौहर जो है ना वो मुझसे मोहब्बत करे। नहीं, आपका हक नहीं बनता था आंटी, आंटी साहिबा, नो, ये आपका हक नहीं बनता कि आपका शौहर आपसे मोहब्बत करे। ठीक है ना, कितने हैं यहाँ पे शादीशुदा, सब जान लें इस बात को कि आपका हक नहीं है कि आपका शौहर आपसे मोहब्बत करे, यू डोंट डिजर्व दिस नो मैटर व्हाट यू डू। कितनी ही अच्छी बिरयानी बना दें, कितनी अच्छी निहारी बना दें, कितने अच्छे पराठे बना दें, कितनी उसकी खिदमत कर लें, फिर भी आपका हक नहीं बनता कि आपका शौहर आपसे मोहब्बत करे। ठीक है ना, आपका हक नहीं बनता, किसका हक बनता है कि कोई उससे मोहब्बत करे? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, अल्लाह का हक बनता है कि उससे मोहब्बत की जाए। ठीक है ना, और अगर मखलूक में फिर किसी का हक बनता है ना कि उससे मोहब्बत की जाए, तो सिर्फ वो जो कि सिर्फ अल्लाह की निस्बत की वजह से जिंदगी गुजारते हैं, जो सिर्फ अल्लाह की निस्बत से जिंदगी गुजारते हैं ना, मखलूक में तो सिर्फ उनका हक बनता है कि उनसे मोहब्बत की जाए, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि हमारे जो है ना वो मशायख बताते, बस, और किसी का हक नहीं बनता। हम आप तो किसी खाते में ही नहीं है ना, हम आपके तो कोई हैसियत ही नहीं कि कोई हमसे मोहब्बत करे और इज्जत करे। तो फरमाते हैं कि ना किसी की नजर में इज्जत बढ़ने की और ना किसी के दिल में मोहम्मद मोहब्बत पैदा होने की तवक्को रखना। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल अबस है ये तवक्को। जब किसी से कोई उम्मीद न रखोगे तो फिर कोई तुमसे कैसे ही बर्ताव करेगा, तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होगी, और खुद जहां तक हो सके सबको फायदा पहुंचाओ। ठीक है, सबको फायदा पहुंचाओ, क्योंकि इससे अल्लाह ताला खुश होते हैं, अल्लाह ताला राजी होते हैं। ठीक है, कि उसकी मखलूक को फायदा पहुंचाने का काम किया जाए, और फायदा, असल फायदा क्या होता है, आखिरत का ही फायदा होता है असल फायदा, और दुनिया के अंदर किसी की तकलीफ को दूर कर देना ये दुनिया का फायदा होता है। ठीक है, किसी की तकलीफ को दूर कर देना ये दुनिया का फायदा होता है, यानी दुनिया में आपको किसी आपको आपको किसी को दुनियावी फायदा पहुंचाना है ना, तो उसकी तारीफ लिख लीजिए, सुन लीजिए उसकी तारीफ। ठीक है, दुनिया में फायदा पहुंचाने का मतलब यही नहीं है कि किसी को खूब सारा माल दे दो, किसी को खूब अच्छे अच्छे जो है वो कपड़े पहना दो, किसी को अच्छी सी जो है वो गाड़ी खरीद करके दे दो, नहीं। अगर उसकी करंट गाड़ी से उसको तकलीफ थी तब तो ठीक है, उसको जो है ना वो गाड़ी दे देने से उसका फायदा हो गया, यानी उसकी तकलीफ दूर हो गई। लेकिन अगर उसकी गाड़ी में उसको तकलीफ नहीं है, तो आपने जो उसको यानी और मजीद अच्छी गाड़ी खरीद करके दे दी है ना, इससे उसका फायदा नहीं हुआ है। ये
ये उसूल है, समझ लें इस उसूल को, आपने उसको फायदा नहीं पहुंचाया। ठीक है, तो जाहिर है आपका, आप गाड़ी तो किसी को खरीद के देने से रही, ठीक है ना, आप जो है वो कपड़ों कपड़ों की हद तक की बात समझ लें, ठीक है, कि किसी के पास जो है ना वो नॉर्मल कपड़े थे, जिससे कि उसका सतर भी छुप रहा था, जिससे उसकी जो है ना वो यानी काम चल रहा था उसका, ठीक है ना, सर्दी से भी बचाव हो रहा था, गर्मी से भी बचाव हो रहा था, ठीक है ना, और बेहयाई बेशर्मी इस किस्म का भी कोई मसला नहीं हो रहा था। तो अब जो है ना वो आपने उसको ला करके चार और जोड़े ला कर, जैसे कि खवातीन अपना हक समझ करके कि भाई हम जितना तोहफा किसी को बजा के डंप करेंगे ना, तो हम उसके साथ जो है वो भला उसकी भलाई कर रहे हैं। तो वो जाती है ना, इंडिया जाती है इंडिया जाती है या पाकिस्तान जाती है, तो जिनसे ना उनको जरा अकीदत मोहब्बत हो जाती है ना, तो वो इंडिया से ऐसी चीजें लेकर के आती हैं कि जिसकी कि किसी को कोई जरूरत नहीं है, वो आके डंप कर देती हैं, ठीक है ना। तो ये आप किसी का फायदा नहीं कर रहे हैं, ये आप पलट के उल्टा तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उल्टा तकलीफ पहुंचा रहे हैं। नहीं समझ में आती बात, ठीक है। तो खवातीन का मामला कपड़ों तक, तो कपड़ों के मामले में भी समझ लें कि जिसका काम जो है वो अच्छा चल रहा है, सर्दी गर्मी से भी निजात है, और जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फटे पुराने कपड़े उसको नहीं पहनने पड़ रहे हैं, तो अब उसके ऊपर जो आप ला करके डंप करती हैं ना एक नया जोड़ा, तो आप उसको कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे। ये आप जो है ना वो क्या कर रहे होते हैं, अपने अपने आप को तस्कीन दे रहे होते हैं खाली, बस बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटे बच्चे को जो है वो टी शर्ट्स पहनाते हैं, डैडीज लिटिल प्रिंस, और जो है ना वो बच्ची को पहनाते हैं मॉमीज लिटिल प्रिंसेस, और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है आई लव मॉमी आई लव डैडी, राइट। तो ये कोई छोटा बच्चा कह रहा होता है कि आई लव डैडी आई लव मम्मी, राइट। ये कौन, ये किस किसको तस्कीन हो रही होती है, अम्मा अम्मा जो जिसने किया जाए वो दुकान में जाकर के ऐसी टी शर्ट खरीद करके या ऐसा कपड़ा खरीद करके बेबी को पहनाया हुआ होता है, तो अम्मा साहिबा अपने आप को खुश करने के लिए, राइट। अब्बू साहेब जो है वो अपने आप को खुश करने के लिए बच्चों को, बच्चे का क्या, बच्चों को क्या पता है कि वो कौन सी टी शर्ट पहना हुआ है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल यही मामला जो है ना हमारे तोहफों का भी यही मामला होता है, हम जो तोहफे दे रहे होते हैं ना वो अपने आप को खुश करने के लिए दे रहे होते हैं, जिस जिसको दे रहे होते हैं उसको खुश करने के लिए नहीं दे रहे होते, ठीक है। तो फायदे की तारीफ क्या है, फायदा पहुंचाने की तारीफ क्या है, वो ये है कि उसकी तकलीफ को उससे दूर करना, ये है फायदा पहुंचाना। तो आपको पहले पता होगा कि उसको तकलीफ है क्या, तब आप उसकी तकलीफ को दूर करने की कुछ कोशिश करेंगे, तकलीफ का तो कुछ पता ही नहीं, तो आप क्या फायदा पहुंचा रही है भाई किसी को। क्या लिखा आपने, या तकलीफ पहुंचा रहे हैं या फिर जैसे औलाद के मामले में उसको स्पॉइल कर रहे होते हैं। हाँ, अगर वो औलाद की तरह की चीज है, यानी उसकी मेच्योरिटी लेवल जो है वो कम है, तो जब आप उसको ऊपर से ला करके मजीद तोहफे दे रहे होते हैं ना, तो आप उसको स्पॉइल कर रहे होते हैं। मेच्योरिटी लेवल जिसका कम होता है ना, जहनी सलाहियत जिसकी कम होती है ना, उसको फिर आप मजीद तोहफों के जरिए से स्पॉइल कर रहे होते हैं, उसकी आदतें बिगाड़ रहे होते हैं। और जिसकी मेच्योरिटी लेवल जो है वो कम नहीं होती बल्कि अच्छी होती है, तो आप उसको अपने तोहफों के जरिए से स्पॉइल नहीं कर रहे होते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो मेच्योर हो चुके हैं, अब आप उनको स्पॉइल नहीं कर रहे होते, आप उनको तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं। लिख लें इन बातों को अगर अभी तक नहीं लिखा है तो। वी डू दिस ऑल द टाइम, यू डू दिस ऑल द टाइम ऑल्सो, ठीक है ना। तो भाई ये क्लास ले रहे हैं किस काम के लिए ले रहे हैं, क्लास कुछ सीखने के लिए ले रहे हैं कि ऐसे ही ले रहे हैं खाम खा में, कुछ दुरुस्त करने के लिए ले रहे हैं ऐसे ही ले रहे हैं खाम खा में। तो ये जो आपको दो इस वक्त बातें बताई हैं ना, ये मुस्तकिल ये चल रहा होता है हमारे हमारे जिंदगी के अंदर, तकलीफ पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना, स्पॉइल करने का मतलब नुकसान पहुंचाना समझ लें, ठीक है ना। तो इस क्लास का आपको फायदा कब होगा कि जब आपको ये दो उसूल जो है ना वो याद रहेंगे, क्योंकि क्योंकि ये काफी हद तक जो है ना ये नए उसूल हैं, वी नेवर थिंक अबाउट दीज थिंग्स, हमारे जहन में ख्यालात सोचे नहीं आ रही होती, तो उसको लिखेंगी तब आपको याद रहेगा, वरना इंसान निसियान का पुतला होता है, भूल जाता है चीजों को, ठीक है ना। याद रहेंगी तो फिर उसके बाद उनके ऊपर अमल करना भी मुमकिन होगा इंशाल्लाह। अब उसको खत्म ही कर लेते हैं, तब से बतानी है चल रहा है टॉपिक। तो कहते हैं कि अगर किसी के लिए कोई भलाई की बात समझ में आए और ये यकीन हो कि वो मान लेगा तो उसको बता दो, वरना खामोश रहो, ठीक है। यकीन है कि वो मान लेगा तो उसके लिए, उसका मतलब ये नहीं है कि यकीन तो मेरे किसी के ऊपर भी नहीं है कि कोई मेरी बात मानेगा तो मैं किसी को भलाई की बात नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप इंसानों को शैतान मत समझे, कि ये तो यकीन है कि वो नहीं मानेगा बात। ये हजरत नहीं कह रहे हैं कि आप लोगों को शैतान समझे, कि शैतान को नसीहत जो है ना वो कोई असर नहीं करती, तो इस वजह से जितने लोग दुनिया में मेरे इर्द गिर्द रहते हैं उन वो भी सारे के सारे शैतान हैं, तो उनको भी मेरी नसीहत असर नहीं करेगी, तो इस वजह से मैं नसीहत करूंगा ही नहीं किसी को। नहीं, इंसानों को शैतान मत समझना शुरू कर दें, इल्ला ये कि वो डिक्लेयर्ड शैतान हो, यानी वाकई शैतान वो होता है जो कि बहुत ही एक्टिवली दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा होता है, बहुत ही ज्यादा यानी मुस्तकिल लगा हुआ होता है इसी मेहनत के अंदर के दूसरों को नुकसान पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। ऐसा शख्स जो होता है ना फिर वो शैतान होता है, ऐसे शख्स को अवॉइड करना चाहिए, उसको नसीहत करने की गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेजोरिटी में नजर नहीं आते, जो कि बहुत ही मुस्तकिल यानी कर रहे हैं। वो क्रिमिनल्स किस्म के लोग होते हैं, वो हमारे घरों में और हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग नहीं रहते हैं, या एक आध रहते हैं खाली इस तरह के लोग। बाकी जितने लोग हैं ना, जैसे आप हैं फॉर एग्जाम्पल, या मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इतना नहीं है कि खैर आजदी में तो फिर कहना चाहिए कि आप भी शैतान ही, लेकिन नहीं आप लोग तो, मैं तो फिर अपनी बात छोड़ दूँ, आपकी बात आप शैतान नहीं, जब भी तो हम क्लास कर रहे हैं आप लोगों को ये बातें सुना रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि एहतमाल है कि आपने कुछ नहीं सुनना, एहतमाल है इस बात का कि आपने बात सुननी नहीं है, आपने बात जो है ना वो माननी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बात बता रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आप शैतान नहीं है, ठीक है ना। कमी कोताही हर इंसान के अंदर होती है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, ठीक है। तो अब जो है ना वो जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं ना कि अगर यकीन हो कि वो बात मान लेगा तो उसको बता दो, वरना खामोश रहो, ठीक है। तो अब मुझे तो यकीन नहीं है कि आप मेरी बात मानेंगी, तो फिर मैं आपको क्यों बात बता रहा हूँ। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की नाफरमानी कर रहा हूँ मैं यहाँ बैठ करके, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि आप मेरी बात मानेंगे, और तजुर्बा जो है ना वो इस बात के ऊपर शायद है कि लोग क्लास में आते हैं और सुनते हैं जो भी करते हैं क्लास के अंदर आकर के, और फिर अगले दिन जो है ना वो ऐसी हरकतें करते हैं जो कि बिल्कुल क्लास की बातों के खिलाफ थे। तो मेरे पास तो तजुर्बा भी बे इंतहा है इस बात का, ठीक है। फिर मैं आपको क्यों क्यों ये बातें कह रहा हूँ, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि आप मेरी बात माने। क्यों? इसलिए कि पहली बात तो ये कि मैं आपको शैतान ही समझता, ठीक है ना, भाई इंसान है, ठीक है, और इंसान के अंदर कमी कोताही होती है, सब में होती है, मेरे अपने अंदर है, तो फिर मैं दूसरों के बारे में कैसे ज्यादा। तो दूसरी बात यह है कि जब कोई शख्स आपकी बात की तरफ थोड़ी तवज्जो कर रहा है ना, यानी थोड़ा ऐसा है कि आप उसको बात कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग जो है वो उन्होंने एक क्लिक करके जूम का सेशन ज्वाइन कर लिया है, तो आपकी तरफ से एक अमल हुआ है कि आपने क्लिक किया, आपकी बस में था कि आप क्लिक ना करती, राइट। आप कहती भाई मुझे सोने दो, मुझे जो है वो कोई और शॉपिंग साइट के ऊपर जाना है, मैं उधर जा रही हूँ, मैं नहीं जाती इस क्लास के अंदर। बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस थे, आप कर सकती थी, क्लिक करने में कोई आपको तकलीफ नहीं हुई, आपने कोई बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं दी है, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स को छोड़ करके आपने इस क्लास को ज्वाइन किया है ना, दिस इज अ विंडो फॉर मी, ये मेरे लिए एक खिड़की है, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अब मैं जो हूं ना अपनी बात कोशिश करूं कि मैं ऐसे अंदाज से आपको बात समझाऊं कि आपको क्लिक भी कर जाए वो बात, आपको वो समझ में भी आ जाए, आप उस बात से जो है वो रिलेट भी कर सकें,
ठीक है ना। तो ये मेरा करने का काम है कि मैं अपॉर्चुनिटी को लूज ना करूं, मैं अपॉर्चुनिटी को जो है ना वो इग्नोर ना करूं कि भाई एक मेरे पास एक विंडो आई है कि लोग जो है वो क्लिक करके क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज करूं, ठीक है ना, ज्यादा बेहतर से बेहतर जो मुझे अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है उसके साथ जो है ना वो मैं बात को समझाने की कोशिश करूं, ठीक है ना। तो अब जो है वो अल्लाह ताला के पास तौफीक, अल्लाह ताला के पास है, अल्लाह ताला आपको तौफीक देगा। मुझे यकीन नहीं है कि आप मेरी बात सुनेंगी, मेरी बात मानेंगी पक्के, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे अल्लाह ताला की तौफीक के ऊपर तो यकीन है ना, होना चाहिए ना कम से कम, ठीक है ना। तो मैंने अपनी बात अपनी मिसाल दे करके जो है ना वो कोई अपनी तारीफ करना मकसूद नहीं था, बल्कि ये मिसाल दे करके मकसूद ये था कि आप भी अल्लाह के बंदों के साथ ऐसे ही करें। ये मत समझ लीजिएगा हजरत थानवी रहमतुल्लाह का ये जुमला पढ़ करके कि मुझे तो यकीन ही नहीं है कि कोई मेरी बात मानेगा, इस वजह से मैं किसी को नसीहत ही नहीं करूंगी, इस वजह से मैं किसी से बात ही नहीं करूंगी। नहीं, हजरत थानवी रहमतुल्लाह का हरगिज हरगिज ये मतलब नहीं है, ठीक है। ये मेरा काम था कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह की इस बात से जो गलत फहमी क्रिएट हो सकती थी उसको जो है वो क्लियर करना। अब पता नहीं क्लियर हुई कि नहीं हुई ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो समझ में आया मैंने जितना समझ में आया कोशिश कर ली, ठीक है। मसला यही है कि हम खत्म कैसे करें, एक एक जुमले में जो है वो हमारे 10 मिनट निकल जाते, फिर इधर ही रोक दें। असल में कुछ और सिलसिले भी शुरू करने हैं, तो इस वजह से आप लोगों से जो है ना वो एक्स्ट्रा टाइम भी ले रहे हैं और खत्म करने के भी तहैया किया हुआ है। अगर किसी तक तो कोई फायदा पहुंच जाए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। चलें, इसके ऊपर तो पहले बात हो चुकी है, अल्लाह का शुक्र अदा करो और उस शख्स के लिए दुआ करो, और अगर किसी से कोई नुकसान या तकलीफ पहुंचे तो ये समझो कि ये मेरे गुनाह की सजा है। वही बात, बच्चे ने अगर आपकी बात नहीं मानी ना तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला से माफी मांगना है उसी वक्त दिल ही दिल के अंदर, ए अल्लाह यकीनन मैंने आपकी बात नहीं मानी थी ना, इस वजह से मेरे मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, अपना गुना फौरन अपना गुना अल्लाह ताला के सामने तौबा करो और उस शख्स से बगुस मत रखो। यानी जिसकी नजर अपने गुनाह के ऊपर पड़ जाएगी, जिसका जो है ना वो ये एटीट्यूड हो जाएगा कि अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी, अगर किसी ने मुझे इज्जत नहीं दी, तो यकीनन उसकी वजह ये थी कि मैंने अपने ऊपर वालों को इज्जत नहीं दी थी, मैंने अपने ऊपर वालों की बात नहीं मानी थी, ठीक है। तो फिर ऐसा शख्स फिर बगुस कैसे रख सकता है दूसरों से, ठीक है ना। काश के माने की बात समझ में आ जाए तो हमारा सीना जो है ना वो बेकीना बन जाए, हमारा सीना बेकीना यानी कीना हमारे सीने से खत्म हो जाए, ठीक है ना। इतना सा जुमला जो है ना वो अगर हम इसके ऊपर अमल शुरू कर दें। गर्ज ये कि मखलूक की भलाई को मत देखो कि वो कितनी अच्छी, बल्कि हर वक्त अल्लाह पे नजर रखो। आप देखें इतनी बेहतरीन जो हजरत ने किताब लिखी है ना, किताब सुलूक वल एहसान, ये है इसकी पंच लाइन, ये है इसकी बिल्कुल जो है ना वो पूरे के पूरे मजमून का खुलासा। हर वक्त अल्लाह पे नजर, उसी से ताल्लुक रखो और उसी की ताबेदारी और याद में लगे रहो, अल्लाह ताला तौफीक दे, ठीक है जी। हर चीज का लुब लुबाव यही है, अगर ये हमने कर लिया ना तो अखलाक जमीमा वो हमारे अंदर से निकल जाएंगे और अखलाक हमीदा हमारे अंदर पैदा हो जाएंगे, और अगर हमने ये वाला काम नहीं किया ना तो आप घंटों पढ़ती रहें और सुनती रहें और लोगों को भी बताती रहें, लेकिन अपने अंदर ये तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है। क्या लिखा आपने, फिर हमें किसी को गिफ्ट्स किस तरह सोच कर देना चाहिए, पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उसको क्या जरूरत है। जी हाँ बिल्कुल, गैर जरूरी गिफ्ट्स किसी के ऊपर लाद देना जो है ना ये उसकी तकलीफ का सबब बन जाता है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो गिफ्ट जो है वो मोहब्बत करने वालों को देना चाहिए कि ताकि उनके साथ हमारी मोहब्बत बढ़े, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोहब्बत आपस में तोहफे देते रहा करो कि तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है, ठीक है। तो जिनके साथ आपको मोहब्बत है ना और जिनके साथ आप मोहब्बत को बढ़ाना चाहते हैं ना,
तो अब उनकी जरूरियात और उनकी तकालीफ वगैरह भी पता होनी चाहिए। तो जरा मालूम करें पहले अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के बारे में, क्योंकि उनकी क्या सिचुएशन है, क्या ऐसी जो है ना, वो अपने आप को खुश करने के लिए लोगों को गिफ्ट जो है ना खाली नहीं देने चाहिए। ठीक है, बहरहाल बताना अच्छे से नहीं बता फरमाए, बात की समझ और की तौर पर बता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब जो है वो 2 मिनट की ब्रेक लेकर के हम मिसाली बहू की क्लास को शुरू कर देते हैं।